इससे भी सूक्ष्म जो है अंतःकरण है। अंतःकरण के तीन भेद है, मन बुद्धि अहंकार। उसमें मन सबसे मोटा है, विकारी है, ये अंतःकरण का मोटा विकार है, या यूं कहो कि कार्य है। तो अहंकार का कार्य वही मन है, जो देह के मन जो अहंकार एक व्यक्ति है उसका मोटा रूप है, वही एक प्रकार से मन है, जो मनन करता है, चिंतन करता है, हरेक पदार्थ का मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, ये मन है। मन अंतःकरण है, इंद्रियों से विषयों से सबसे सूक्ष्म, परमात्राओं से भी सूक्ष्म। मन सबका चिंतन कर सकता है, और मन से भी परे जो अहंकार है, अहंकार के जो परमाणु और भी सूक्ष्म है, मन के परमाणुओं से भी अहंकार के परमाणु और सूक्ष्म है, और अहंकार के परमाणुओं से बुद्धि के जो परमाणु है वो उससे भी सूक्ष्म है। बुद्धि का जो परमाणु है, परमाणु तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझाने के लिए, या दूसरे नाम से उसको समझाया जाए तो बुद्धि का संस्कार कह दो, संस्कार के नाम से सब कोई नहीं समझे तो उसका एक नाम परमाणु रख करके समझा रहे। और बुद्धि से भी परे, उससे भी सूक्ष्म ईश्वर की जो शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं, जो बुद्धि का भी कारण है, उसके परमाणु इतने सूक्ष्म है कि बुद्धि के द्वारा भी ग्रहण करने में नहीं आती, और सारी बातों को बुद्धि समझ जाती है, पर अपने परे की जो दो चीज है उसको बुद्धि, उसके असली स्वरूप को बुद्धि नहीं समझ सकती। बुद्धि उसमें प्रवेश होकर के, शामिल होकर के, और उस चीज को बुद्धि है सो समझती। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण है, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है, और जो भिन्न अवस्था है तो गुण है। तो इन गुणों को किसी के साथ में जोड़ने से ये गुण समझ में आते हैं, इनका जो केवल जो स्वरूप है वो बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आता। लोगों की बुद्धि के बीच के मां जो एक ज्ञान है, चेतनता है, जो सतोगुण को कार्य है, जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं, नेत्रों को प्रकाश नहीं, बुद्धि के भीतर को जो प्रकाश, बुद्धि के भीतर के बीच में जिसको हम एक चेतनता कहते हैं, कि एक आदमी सहन करता है तो वह बुद्धि विलीन है, गाढ़ निद्रा में सुत्या हुआ है तो उसकी बुद्धि प्रकृति के मन विलीन है। सपने में तो मन बुद्धि रहते हैं, किंतु गाढ़ निद्रा के समय में, सुसुप्ति अवस्था में मन बुद्धि उससे विलीन हो जाते हैं अपने कारण के मन, तो उसको मोह कहते हैं, मोह। तो वो मोह क्या है कि वो तमोगुण का कार्य है, और जितनी जो चेष्टा है, क्रिया बाहर की नहीं, भीतर की क्रिया, बाहर की क्रिया भी प्रवृत्ति मात्र समझो कि रजोगुण कोई स्वरूप है, पर वो मोटो स्वरूप है रजोगुण को, और रजोगुण को वो सूक्ष्म एक प्रकार से स्वरूप कहे जा सके, समझाने के लिए नहीं, स्वरूप रजोगुण को ऐसा समझाया नहीं जा सके। अपने हृदय के वहां जो फूरना हुआ है, कोई भी बात के वास्ते अपने मन में प्रवृत्ति हुई कि यहां से ऊपर चलो, या एक मन के मन संकल्प हो, तो मन में एक प्रवृत्ति, वही मानसिक जो सूक्ष्म प्रवृत्ति, वो रजोगुण को कार्य है। इस वास्ते मन कार्य होने से रजोगुण कह दो, किंतु रजोगुण को ऐसा स्वरूप नहीं है, तो यही कह जा सके कार्य से ही वह कारण समझाया जा सके। तो अपने शरीर के भीतर में जो चेतनता है, प्रकाश है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, जो सतोगुण को कार्य है, अपने हृदय कमा और जो ये पुरना है, संकल्प है, जैसे वो मोटे रूप में मन बन जा रहा है, तो तीसरी पीढ़ी में आकर के मन बने है बुद्धि के भीतर के बीच के मां जो क्रिया है, वो क्रिया है वो रजोगुण है, और बुद्धि के भीतर के बीच में जो मोह है, निद्रा को जो अंश है, आलस्य है, ये तमोगुण को कार्य है। तो कार्य से उस कारण को समझाया गया, यो बको रूप है यो नहीं कह जा सके, और कार्य ने बको रूप कहे तो कोई हर्ज नहीं है, बर्फ जल को कार्य है, इस बात बर्फ में कोई जल कह देगा तो कोई दोष नहीं है, जल की वो बर्फ बनी है, जल ही बर्फ के रूप में आए है। इसी प्रकार से थी 17 स्तंभ 3 गुण का जो कार्य है उसे उन्होंने गुण में समझाया, और गुण भी खुद प्रकृति को कार्य है। भगवान कहते गुणा प्रकृति संभव, गुण है तो प्रकृति से उत्पन्न हुए, तो प्रकृति है तो खुद गुणों से भी सूक्ष्म है। दूसरे सिद्धांत वाले मानते हैं कि उनकी साम्य अवस्था ही प्रकृति है, प्रकृति एक 17 स्तंभ 3 गुणों के बीच के मां प्रेरित होती है, चाहे यू कह दो प्रकृति का जो प्रमाण सेंस का उस गुणों से भी सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म जो है आत्मा है, आत्मा का आत्मा की सूक्ष्मता विलक्षण है। प्रकृति तक जो आपने बताया वहां तक तो एक प्रकार से ये सब पदार्थ जड़ है, पर प्रकृति से और आगे चेतन में आए जीवात्मा में तो यहाँ एक प्रकार से यहाँ अब चेतनता जब आ गई तो चेतन को परमाणु के रूप में नहीं कह सकते, प्रकृति तक समझो कि परमाणु आप कह सकते हो फिर भी समझाने के लिए, जैसे व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति जीव की जो प्रकृति है वो व्यष्टि है, तो प्रकृति का ही मोटा रूप जो सो स्वभाव है, इस वास्ते स्वभाव और प्रकृति दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। समझाने के वास्ते या उसको पर्याय भी कह सकते हो कि प्रकृति कह दो चाहे स्वभाव कह दो, तो एक तो जीव को स्वभाव है, एक ईश्वर को स्वभाव है, तो ईश्वर को जो स्वभाव है वो तो समष्टि है, जीव को व्यष्टि है, ईश्वर की प्रकृति और जीव की प्रकृति, तो जीव की प्रकृति है वो दूषित होती है, ईश्वर की प्रकृति है शुद्ध हो, तो प्रकृति को फर्क हो गया ना, इस वास्तव में विभाग हो गया, और जीव ऐसा नाना है और जीवात्मा बहुत है और परमात्मा एक ही है, तो जीवात्मा की जो एक प्रकार से नाना संज्ञा है वो शरीर के संबंध से है, और शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही शरीर जो है वो प्रकृति का विकार है, प्रकृति का कार्य समझाने के वास्ते बताया जाता है, किंतु जड़ के द्वारा चेतन को समझाना बहुत ही कठिन है। जैसे आकाश है निराकार है और आकाश के मां बादल है वो साकार है, तो बादल की जो तो शरीर समझो और आकाश की जो आत्मा समझो, तो एक बादल का जो टुकड़ा उस एक बादल के टुकड़े के बीच के मां जल के किरण परमाणु हो सके, जल के परमाणु को किरण हो सके, एक इंची में इंची भर के बादल के टुकड़े में किरणों परमाणु असल जल के हो सके, वो जल के परमाणुओं का समूह ही बादल है, उसका एक एक परमाणु जो है सो अपना अपना अलग है, अपने सो सता रखे, तो एक जो जड़ को परमाणु है वो भी तो आकाश में है ना, तो आकाश को एक रूप से विभाग नहीं अविभक्ति है आकाश, किंतु वे जल का नाना परमाणु मान ले वहां तो वे समझो कि लाखों करोड़ों परमाणु जल के जो जिस आकाश में है अपने अपने स्थान पर, वो आकाश का स्थान उसके साथ में संबंध रखे। तो ऐसे आकाश की जो आनंद जो चेतन जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है उसमें इनका जो कारण जो शरीर है वो एक परमाणु की जो वो कारण शरीर ही फिर सूक्ष्म बने, सूक्ष्म से ही स्थूल बने, सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व बने गए हैं, 10 इंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है, अहंकार बुद्धि के अंतर्गत है, इस वास्ते उसको अलग नहीं लिया। इस 17 तत्वों का समूह है वो सूक्ष्म शरीर है, जो इस शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाता है, दिखता नहीं, वो हवा से भी सूक्ष्म है, इस वास्ते वो नहीं दिखता। प्राण जो है हवा की जो स्वरूप है तो हवा भी नहीं दिखती, और वो तो एक प्रकार से कारण शरीर तो इन सब से सूक्ष्म है, मन बुद्धि से उससे सबसे। तो ऐसा जो ईश्वर की जो माया प्रकृति स्वभाव उसका एक प्रमाण इस चेतन के साथ में संबंध है, वो दोनों मिलकर इसकी जीव संज्ञा है। अलग अलग किया जाए तो वो कारण शरीर है और वो एक प्रकार से शुद्ध चेतन आत्मा है। शुद्ध चेतन जो आत्मा है उस अंश को तो कहते हैं कूटस्थ व्यष्टि चेतन, और उसका व्यष्टिपन उस कारण शरीर के समूह से ही है, नहीं तो उसका विभाग हो नहीं सके। तो कारण शरीर के साथ में जो चेतन है व्यष्टि चेतन, तो दोनों मिलकर उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा उसका नाम। कारण शरीर के संबंध रखता हुआ जीवात्मा का जो स्वरूप है उसने का वर्णन शास्त्रों में श्वेता श्वेत रूप सदाज में बताया है कि अपने जैसे शरीर का जो एक रोम है, रोम का अगला भाग अगला हिंसा, रोम का अगला हिंसा और उसका फिर हजार टुकड़ा हुए, इस तरह से मैं उस जीव की शिव की परमाणु रूप माने, तो वो जीव को जो शुरू के मानो कि इस प्रकार सूक्ष्म है कारण शरीर जीव को, से ही बो विभाग हो सके, ऐसे सूक्ष्म है सो अणु को भी वो अणु जिकना जीवात्मा का, तो जीवात्मा को तो विभाग हो नहीं, वो तो कोई बतला नहीं सके, किंतु वो कारण शरीर को एक विभाग हो, वह विभाग से थी वह की जीव संज्ञा कर करके के, और मैंने व्यष्टि चेतन संज्ञा करी, तो वह व्यष्टि चेतन और वो कारण शरीर दोनों मिलकर के बाकी संज्ञा हुई जीवात्मा, अलग कर दिया जाए समझ तोड़ दिया जाए तो वो तो प्रकृति के वहां मिल जाए, वो परमात्मा मिल जाए। आत्मा जो है वो तो परमात्मा कौन से, ममई वांसो जीव लोक के जीव होते सनातने, 15 जाके 7 के श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और इसका जो शरीर है वो प्रकृति का अंश है, तो दोनों मिलकर के ही सृष्टि की उत्पत्ति हो। अब आपको ये दूसरी बात बताई जाती है परमाणु के विषय में, प्रातःकाल पीछे चले आप परमाणु का, तो वो उसका मूल जो कारण मूल जो तत्व समझाने से वह बात समझ में ठीक आए, इसलिए यह सब भूमिका आपको बताए। और ईश्वर जो परमात्मा ब्रह्म उसका तो समझो कि वो तो परमाणु तो जड़ है, वो तो उन सब से रहित है, फिर भी कहा जाए वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, ये इसलिए बतलाया जाता है कि वो मैं की सूक्ष्मता में कोई दूसरों बुद्धि के द्वारा भी नहीं जान सके, और फिर भी जो बुद्धि के द्वारा परमात्मा को स्वरूप जो जानने में आवे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पर, वो बुद्धि से मिले हुए परमात्मा को स्वरूप जानने में आए, और केवल जो शुद्ध है बुद्धि से जो अलग है रहित है वो समझ नहीं आ सकता, बुद्धि की सामर्थ नहीं बन सकते, तो बुद्धि ग्राह्य। और मैं कोई वर्ण क्यों जा रहा है वाणी के द्वारा शास्त्र में वेदों के मां सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म ये सब जो वर्ण क्यों जा रहा है ब्रह्म को मैं को वर्ण क्यों जा रहा है जो बुद्धि के समझ में आ सके, यानी बुद्धि से मिले हो बुद्धि मिश्रित बुद्धि अवशिष्ट ब्रह्म को जो स्वरूप है उसी के लिए भगवान गीता में कहो ज्ञेयं यत् तत्त्वं वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमस्मि, मैं जानने में आने वाला जो परमात्मा का स्वरूप है जिसका नाम ज्ञेय है वो तेरे को मैं कहूंगा, जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जा, अमृत के नाम से जो बात कही गई है वो ब्रह्म का शुद्ध केवल स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, और बुद्धि के ग्रहण करने में अब है वो निर्गुण निराकार नहीं है वो सगुण निराकार। ये जो यहाँ वर्णन है कलियुग पुराण मनुशासिता है ये जो बताया मैं अभी आठ विद्या का नौका शिलो के ये एक प्रकार सगुण निराकार जिसको अजीत के नाम से कहा गया, और निर्गुण निराकार को किस नाम से कहा गया अक्षरम ब्रह्म परम परम जो अक्षर है वो ब्रह्म है, अक्षर माने जो खे हुए अक्षर जो कदे विनाश को नहीं हुए पतन को नहीं हुए अभाव को नहीं हुए अदृश्य को नहीं हुए वो सदा सर्वदा अपना एक रस एक रूप के मां सदा ही मौजूद है वो है सो अक्षर है। और मैंने परम इस वास्ते कहे हो जीवात्मा को नाम भी तो अक्षर है, अक्षर एवस्त्रवाणी भूतानी कूटस्थोक्षर उच्यते, संसार में दो पुरुष एक क्षर और एक अक्षर तो सारे भूत प्राणी वो तो अक्षर है जीवात्मा वो अक्षर है, तो इस वास्ते परम अक्षर जीवात्मा के अक्षर परम अक्षर उसमें फर्क है, केवल फर्क है कि जब जीवात्मा ब्रह्म में प्राप्त हो गया है तो मैं को जीवात्मा को जीवात्मा पर नहीं रहे वस्तु तो वह है पर वह वस्तु अपने आत्मा जीवात्मा परमात्मा के रूप में बदल जावे जरा वो अक्षर से परम अक्षर हो जावे, इस वास्ते वो परम अक्षर है। और इसमें खे क्या हो कि इनको शरीर के साथ में समझ विच्छेद होने इसको खे होने दो, मैं खे होने वाली चीज तो उसके साथ में थोड़ी थी क्या शरीर, जीवात्मा को तो कहे हुए नहीं आत्मा को तो कहे हुए नहीं, और मैं जीव भाव थोगों के संबंध से समझा बस समझ भी छेद वो एक प्रकार से आपने खय होने वाली और ब्रह्म के बीच में कोई खय होने वाली चीज नहीं, इस वास्ते उसको परम अक्षर कह रहे वो निर्विशेष उसी को नाम निर्विशेष ब्रह्म है उसी को नाम निर्गुण ब्रह्म है उसी को नाम परम अक्षर है। तो जो आपने सगुण जो परमात्मा को स्वरूप है मैंने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पर कहे जा सके, इसलिए कि समस्ती बुद्धि जो कहे उससे या उसकी ईश्वर की जो प्रकृति कही जाए उससे संबंध है, शुद्ध जो ब्रह्म है वहां तो न प्रकृति है न कोई आपने समस्ती बुद्धि है कुछ नहीं, तो इसलिए जो अधि यज्ञ है वो सगुण है निराकार है, और परम जो अक्षर जो है वो निर्गुण है निराकार, निर्गुण भी है निराकार भी है, निराकार होकर के गुण से अतीत है, निराकार तो और बहुत सी चीजें हैं, प्रकृति है वो भी निराकार है, जीव है वो भी निराकार है, बहुत सी चीजें हैं निराकार, मन बुद्धि है ये भी निराकार है, पर आपको व्यक्तित्व पकड़े जाओ है इसलिए निराकार होकर के इससे भी और बढ़ करके निराकार वो चीज है जो पकड़ी नहीं जा सकती। तो अब आपको और सब परमाणुओं की बात बतलाई जावे, अर्थ का अपने सिद्धांत बतला दिए, जिससे आप समझ सको कि भी ये परमाणु की चीज है। परमाणुओं को समूही अनुगम है, जिसके बीच के वहां इतनी शक्ति भरी जाग है कि जिससे हजार आदमियों को विनाश कर डाले। अब ख्याल करना चाहिए, अब जो ये विषय है परमाणुओं को, इनको तो बड़ो विस्तार है, ये कोई दो चार मिनट में नहीं कही जा सकते, तो कम से कम इसके लिए एक घंटा की जरूरत। जो आपने एक सिद्धांत बतला दिया, संसार में जितने पदार्थ है सबके परमाणु, जड़ जो प्रकृति है उसी का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो एक प्रकार से परमाणु है, वो आपने बुद्धि का परमाणु है, बाकी उसके बाद जितने जो परमाणु है वो उससे मोटा हो, उससे स्थूल हो, उससे स्थूल हो, ऐसा जितनी बीमारियां हैं उनके सबके परमाणु हैं, जितना जो स्वभाव है उन सबके परमाणु हैं, कर्मों की क्रिया के सब परमाणु हैं, पदार्थों के सबके परमाणु हैं, भावों के परमाणु, हृदय के जो भाव है वो एक हृदय में स्थित हो, हृदय के भावों के परमाणु, भाव के भी दो भेद है, मोटे दो भेद, दुर्भाव और सद्भाव, क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता, ये जितने जो उत्तम उत्तम जो गुण है सद्भाव रूप परमाणु। और दुर्भाव क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष, जितने जो दुर्गुण है ये दुर्गुण रूप आपने परमाणु, ऐसे क्रिया रूप परमाणु, क्रिया के भी अच्छे और बुरे दोनों भेद है, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं वो बुरी क्रिया है, जिसको हम शास्त्रविद कहते हैं वो सात्विक क्रिया है। तो ये सब जो समझो कि यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है, तीर्थ है, व्रत है, ये इताजी के जो आपने तीर्थ करना, व्रत करना, करना जिसके साथ में लाग जाए वो क्रिया हो जाए, ये बाहर की क्रिया, और भीतर की क्रिया मानसिक क्रिया हो, जिससे संकल्प विकल्प है तो ये क्रिया है, और ये मन की क्रिया है ये मानसिक प्रमाण, और भाव को भाव है ये बुद्धि के प्रमाण, सूक्ष्म परमाणु बुद्धि के परमाणु। तो गुण युग थे, भाव युग थे, क्रिया युग थे, पदार्थ युग थे, ये सब अलग अलग परमाणु, और सब जितने पदार्थ थे तो इसी प्रकार से थी ये प्रकृति जो है जड़, उसका मोटा रूप आया वो होया अज्ञान, उसका और मोटा रूप आया तामसी अंश का वो हो गया समझो कि अंधकार। तो नेत्रों का जो विषय है वो प्रकाश अंधकार, दोनों अलग अलग, बुद्धि का जो विषय है वो अलग अलग, ज्ञान और अज्ञान, प्रकृति और पुरुष के साथ में मुकाबला, चेतन के साथ में, जड़ चेतन, जीवात्मा चेतन और प्रकृति जड़, जीवात्मा की जो बुद्धि है एक प्रकार से उसमें दो चीज ज्ञान और अज्ञान, इसी तरह से थी हमारे नेत्र, उनके दो विषय अंधकार और प्रकाश, तो ये तीनों है जड़ है, और तीनों ही एक प्रकार से तमो गुण रूप है, जो ज्ञान है और प्रकृति का तम भाव है वो, और जो अंधकार है ये सब एक प्रकार से तम गुण है, और क्रिया जो है बाहर की क्रिया, मन की क्रिया, और समझो कि प्रकृति के मां भी क्रिया होती रहे, तो ये तीनों क्रिया जो है सो रजोगुण रूप है, और बुद्धि जो है और समझो कि अपने चेतन जो आत्मा है, बुद्धि जो है और जो दृष्टि जो है, प्रकाश जो है, ये सब एक प्रकार से भी ये सतोगुण का समूह है। इस प्रकार से इनको समझ करके इनके प्रमाणों को विशेष रूप से थी विस्तार से समझने की जरूरत है, तब आपको मालूम हो जाएगा कि भी संघ का जो गुण और दोष किस तरह से ये संसार में है। नारायण 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 नारायण